Abschnitt.
Abschnitt.
Bechad. Sada apne ko baap ke sarv khazano ke malik. Aisa anubhav karte ho. Sada apne ko baap ke khazano ke malik. Aisa anubhav karte ho. Malik ban gaye ho ya ban rahe ho. Jab sabhi balak so malik ban gaye, to baap ne sabhi ko ek jaisa khazana diya. Ya kisko kam diya, kisko jyada diya. Ek jaisa diya. जब मिला एक जैसा फिर नंबरवार क्यों खजाना सबको एक जैसा मिला फिर भी कोई भरपूर कोई कम इसका कारण है कि खजानों को खजाने को संभालना नहीं आता कोई बच्चा खजाने को कई बच्चे खजाने को बढ़ाते हैं और कई बच्चे गवाते हैं बढ़ाने का तरीका है
यूज करना
उपयोग करना बढ़ाना बांटना बांटते दान करना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं अविनाशी खजाना है इस खजाने को जितना बांटना चाहे उतना बड़ा जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो सभी खजाने को संभालना अर्थात बार बार खजानों को चेक करना जैसे खजाने को संभालने के लिए कोई ना कोई पहरे वाला रखा जाता है तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए कौन से पहरेदार की आवश्यकता है खजाने की रक्षा कौन करता है संसार में जब खजाने होते हैं तो कौन रक्षा करता है किसी खंडहर में खजाना है रक्षा कौन करता है सांप करते हैं और कौन करता है
गवर्नमेंट करती
है और कौन करता है
सिक्योरिटी
वाले और कौन करता है देवी देवता है
चौकीदार
तो है और भी कुछ है कुछ कुछ भूत प्रेत आत्माएं भी खजानों की रक्षा करती है कोई कोई ऐसे खंडर भी है जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि खजाना है और रात में वहाँ घुंघरू की आवाज भी आती है तो बाबा कहते हैं तुमको बाबा ने अखूट खजाने दिए अखूट अखंड खजानों के मालिक बनाया है सबको एक समान खजाने दिए हैं फिर भी किसी के पास खजाने कम है किसी के पास ज्यादा है खजाने ज्यादा क्यों है क्योंकि जिनके पास ज्यादा है उन्होंने अपने खजानों को बढ़ाया है और खजानों को बढ़ाने की विधि है खजानों को बांटना और खजानों को संभाल कर रखना नहीं आता किसी किसको उसका कारण है कि पहरेदार नहीं रखे है तो बाबा कहते हैं कि इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग यह पहरे वाले हो अटेंशन अर्थात बार बार ध्यान रखना चेकिंग अर्थात बार बार निरीक्षण करते रहना चेकिंग करते रहना तो जो अटेंशन और चेकिंग करना जानता है उसका खजाना कभी कोई ले जा नहीं सकता कोई खा नहीं सकता तो पहरे वाले होशियार है या अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं खजाने कब चोरी होते या तो पहरेदारी नहीं है तब खजाने की चोरी होने की संभावना बहुत है दूसरा पहरेदार है पर मूर्छा में है सोए हुए है या फिर पहरेदार है पर कमजोर इतना अटेंशन रखने वाले नहीं है ध्यान देने वाले नहीं है या फिर पहरेदार ड्यूटी पर है पर घूमने चले गए
पहरेदारी में लता गिर के साथ पहरेदारी के मिल जाए चोर डाकू के साथ मिल जाता
है अच्छा चोर डाकू के साथ मिल जाते वो तो अपने अन्ना दर्जी कहते हैं ना आज देश को देश के खजाने को चोरों से भय नहीं है खजाने के पहरेदारों से भय है ये अन्य हजारिका जी का वाक्य
है भक्षक है
तो जब पहरेदार है ही नहीं तब चोरी होगी जब पहरेदार है परंतु अटेंशन नहीं है उनका तो चोरी होगी पहरेदार है ड्यूटी पर कहीं चले गए हैं तो चोरी होगी या पहरेदार मिल गए हैं चोरों के साथ तो चोरी होगी यहाँ अटेंशन यहाँ कौन से पहरेदार है दो पहरेदार है एक है अटेंशन दूसरा है चेकिंग। बाबा ने कहा है चेकिंग, तुम्हारी चेकिंग की भी चेकिंग करो, हमारी चेकिंग सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती जाए, हमारा आत्म निरीक्षण जो है वो अति सूक्ष्म होता जाए, मन में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे और मन की क्या दशा है, कौन सा संकल्प मन में क्या उत्पन्न कर रहा है। बाबा ने कभी कहा है ना, एक एक संकल्प का मन में क्या प्रभाव होता है उसकी चेकिंग करो, क्या रिजल्ट है, संकल्प आया उससे क्या परिणाम हुआ उसकी चेकिंग। तो एक है चेकिंग, दूसरा है अटेंशन, खबरदार, देखते रहना चौकन्ना होकर, कहीं कोई चोर कहीं से खजाने को लूटने के लिए तो नहीं आ रहे, कोई चोर, आजकल जो चोर है वो भेष बदल कर आ जाते हैं,
पहले निरीक्षण करते रहते,
पहले देखते रहते हैं कहां से चोरी की जाए, पहरेदार का ही ड्रेस पहन के आ जाएंगे, दुश्मन की सेना में दुश्मन के सैनिकों का ड्रेस पहनकर दुश्मन घुसते हैं, जासूस बनकर घुसते हैं पहरेदारी। तो जो भी खजाने हैं उनको बढ़ाना है, उनकी चोरी ना हो जाए। कौन से खजाने हैं? ज्ञान। तो ज्ञान हमारा बढ़ता जाए, गुण हमारे बढ़ते जाए, शक्तियां हमारी बढ़ती जाए, ज्ञान हमारा व्यर्थ ना जाए, ज्ञान का खजाना को बचा के रखना है, शक्तियां बचा के रखनी है, समय बचा के रखना है, संतुष्टता हमारा खजाना है कहीं खो ना जाए, पवित्रता हमारा खजाना है कहीं खंडित ना हो जाए, दुआएं हमारा खजाना है कहीं बददुआएं ना मिल जाए, पुण्य कर्म हमारा खजाना है, पुण्य करते करते कहीं पाप कर्म ना हो जाए, बोल हमारे खजाने हैं कहीं व्यर्थ ना जाए, खुशी हमारा खजाना है कहीं खुश होते होते दुखी ना हो जाए, ज्ञान गुण शक्तियां समय खुशी पवित्रता पुण्य कर्म दुआएं बोल संतुष्टता, ये सब हमारे खजाने हैं, ये हमारी अनमोल निधि है, तो ये खजाने व्यर्थ ना जाए। तो बाबा कह रहे हैं पहरेदार भी जब सो जाते हैं तो खजाना गवा देते हैं, तो दो पहरेदार है, अटेंशन और बार बार चेकिंग, दो पहरेदारों के पैरों में थोड़ा घुंघरू भी लगा देंगे तो उनकी आवाज से चोर नहीं आएंगे, इसलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों ठीक हो तो कभी खजाने को कोई छू नहीं सकता। तो अनगिनत इमेजरेबल जिसकी कोई गणना नहीं है, अगण्य अखूट है, फूट नहीं सकते, अथाह है, अखंड है जो खंडित नहीं हो सकता है, खजाना जमा है ना, खजाने को देख सदा हर्षित रहते हो, जिसके पास बहुत खजाना है वो बार बार खजाने को देखता है हर्षित होता है, नशा चढ़ता है ना, मेरे पास इतना धन है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर तो नहीं आ जाती है। फिर बाबा यहाँ टॉपिक चेंज कर रहे हैं, दुख के ऊपर जा रहे हैं कि खजाने को देखते रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, फिर कभी दुख की लहर तो नहीं आती, स्वप्न में भी दुख की लहर ना हो, संकल्प में भी और स्वप्न में भी, जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है, उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप, बाप के सुख के सागर के स्वरूप को याद करो, जब दुख की लहर आती है, जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती है, आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है, जब परम धाम में है तो भी सुख स्वरूप, और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे, तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी, याद करो कि हम कौन हैं, केवल आदि अनादि नहीं, अनादि आदि दोनों में सुख स्वरूप, और द्वापर में हमारा यादगार क्या है, सुख करता दुख हरता गणेश हम है, और संगम युग में खुशियों का खजाना हमको मिला है, भंडार हमको मिला है, अति इंद्रिय सुख मिला है, वो ये झूला केवल इस संगम युग पर ही लटकाया जाता है, सारे कल्प में ये झूला नहीं मिलेगा झूलने के लिए,
निश्चय भी नहीं, रस्सी भी नहीं है,
वो रस्सी भी नहीं है और किसी युग में, ये झूला अभी लटकाया हुआ है। तो इस परमात्मा झूले में झूलते रहो, इस अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो, और हमारा फरिश्ता स्वरूप है उसमें, उसमें कोई दुख है फरिश्ते में? फरिश्ता कभी दुखी नहीं, अविद्या है दुख, उसको पता ही नहीं क्या होता है,
पता ही नहीं दुख,
दुख का कोई अनुभव ही नहीं है उसको,
सुख का अनुभव है
दुख क्या होता है,
सुख का तो स्वरूप है। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? कभी क्रोध करते हो? क्रोध करना अर्थात चिमन भाई, क्रोध करना अर्थात क्या होना? अशांत हो जाना। और
जानवर को बड़ा क्रोध होता
है, अलग अलग प्रकार के क्रोध होते हैं, अलग अलग प्रकार के भाव दशा उत्पन्न होती है जानवर में। कोई जानवर किस रीति से क्रोध करता है, कोई किस रीति से, कोई किस रीति से। तो बाबा यहाँ कह रहे क्रोध करना अर्थात क्या?
भूत को बुलाना,
भूत को आमंत्रण देना, निमंत्रण देना, और
अज्ञानता।
क्रोध करना अर्थात अज्ञान, क्रोध करता अर्थात शक्तियों को गवाना, व्यय करना, क्रोध करना अर्थात परवश हो जाना, अर्थात स्व को भूल, स्व की विस्मृति, स्व के स्वरूप की विस्मृति, परधर्म में चले जाना, स्वधर्म को भूल जाना,
रावण स्वरूप बन जाना, बाप की निंदा कराना, ज्ञान की निंदा कराना,
बाप की निंदा, ज्ञान की निंदा कराना। आपने क्या कहा? रावण स्वरूप बन जाना, माया युक्त हो जाना, योग युक्त नहीं, माया युक्त, बाबा मैं नहीं, मायामय हो जाना,
योग मुक्त,
योग मुक्त हो जाना, माया युक्त हो जाना और मायामय हो जाना, अर्थात क्रोध क्रोध करना अर्थात दुख देना, दुख लेना। बाबा कह रहे हैं क्रोध करना अर्थात दुख देना और दुख लेना भी। जिसको कभी क्रोध नहीं आता है वो हाथ उठाओ।
ठंडी है
घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए।
मैं उस दिन बाबा ने बोला था, कोई कोई बच्चे हैं जिनको नहीं आता क्रोध,
कभी कोई गाली दे, इंसल्ट करे, तब भी क्रोध ना आए। गाली दे, इंसल्ट करे, अपमान करे, विरोध करे, विरुद्ध हमारे षड्यंत्र करे, झूठा आरोप लगाए, बाकी तो क्रोध थोड़ी आता है। सब कुछ शांति से चल रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, तब थोड़ी क्रोध आता है। क्रोध तो तब आता है जब कोई विरोध करता है, आरोप कर, इल्जाम लगाता है, कोई निंदा, ग्लानी, अपमान, इंसल्ट, ये सब करता है, तब क्रोध आता है, हमारी कमियों को निकालता है।
कमियां हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी निकालना तो आता है।
जैसे वो दिखाते हैं लियो टॉल्स्टॉय करके एक लेखक है विदेश में, वो अपने संस्मरण, अपने जो संस्मरण अर्थात रेमिनिसेंस जिसको कहते हैं, यादगार, यादें जो लिखते हैं ना डायरी में, उसने उसमें एक अनुभव लिखा है कि एक सुबह सुबह, अभी सूरज नहीं उगा हुआ है, अंधेरी रात ही है, कि वो चर्च के वहां खड़ा हुआ है, अचानक उसे नींद नहीं आ रही थी करके वो गया तो देखा एक परिचित सी आवाज उसे सुनाई दे रही है, एक व्यक्ति है अंधेरे में खड़ा हुआ है और जीजस के सामने, जीजस क्राइस्ट के सामने कुछ बातें कर रहा है, कुछ प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा कर देना, हे प्रभु मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, मुझ पर कृपा करो, मैं अब तक जो कुछ भी किया अज्ञान में किया, आप मुझे क्षमा करो, अपनी सब बातें वो जैसे भगवान से कह रहा था। तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ लेखक को कि ये कौन महात्मा आ गया इतनी सुबह सुबह गांव का, और जो अपने बारे में इतना कुछ कह रहा है भगवान के सामने, जरूर ये कोई बहुत बड़ी आत्मा होगी जो इतना मतलब खुले दिल से ये स्वीकार कर रहा है अपनी सभी गलतियों को, बता रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझे क्षमा करो। और फिर उसको ध्यान में आता है, अरे ये तो हमारे ही गांव का एक बहुत बड़ा साहूकार आदमी है। तो उसको बड़ा आनंद होता है कि ये इतना महान आत्मा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना धार्मिक व्यक्ति है, इतना आस्तिक व्यक्ति है। और वो उसे सुनता रहता है, और फिर जब उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है उस साहूकार की, वो पीछे मुड़ के देखता है, तो देखता है ये व्यक्ति से सुन रहा है, तो कहता है तुमने कुछ सुना तो नहीं? बोलते सुना तो सही, तो बोलते खबरदार अगर ये किसी को तुमने बताया तो मैंने तो मैं तो सोच रहा हूँ तुम अच्छे हो। वो कहता है कि तुम इतना कुछ बोल रहे हो, वो मेरी और भगवान के बीच की बात है खाली, ये अगर तुमने किसी को बताया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना क्रोध आ जाता है उसको कि व्यक्ति जो है केवल इधर शांत अपना सब कुछ स्वीकार करा रहा है, पर वो ये नहीं चाहता है कि दूसरा कोई इसे जाने। या फिर इसमें यह भी एक दूसरी राज है कि वो अपने स्वयं को परिवर्तन नहीं करना चाहता, वो गलतियां करते रहेगा और स्वीकार करते रहेगा, पर ये नहीं जानना चाहता कि कोई उसे सुन ले या कोई उसे जाने, कोई उसे किसी को पता चले कि हमारे अंदर भी ये है। एक बहुत ही मतलब सूक्ष्म कहानी है इसमें। तो इस तरह से भी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। हम अगर कुछ गलती करें, हम बाबा को तो सुना दे कि हमसे ये हुआ, पर वो किसी और को पता ना चले फिर, क्योंकि और किसी को पता चले तो वो हमको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। हम ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमको करेक्ट करे, वो हम अपने
तक जिस भाव से सुनेगा।
हाँ,
इस भाव से मनुष्य तो नहीं सुनेगा
वो है। इसमें और सोचो
ये बात तो ये है, बाबा कितना निष्पाप और कल्याणकारी है।
मैं गुस्सा करता हूँ दूसरों को मालूम पड़ेगा ना, वो व्यवहार चेंज करेगा, भावना चेंज हो जाएगी।
मुख्य बात वो है,
वही कह रहा हूँ ये उसके पर मैं और सोच। तो कोई इंसल्ट करे, कोई गाली दे, तब भी क्रोध ना है, सभी का फोटो निकल रहा है। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए बाबा ने कहा, क्रोध मुक्त हो जाना, क्रोध जीत। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, क्रोध करता दूसरा है, दंड हम स्वयं को देते हैं। गलती क्रोध नहीं, गलती कोई दूसरा करता है, दंड हम स्वयं को देते हैं। जल कोई और रहा है, राख हम हो रहे हैं। दूसरा गलती कर रहा है और क्रोधित हम हो रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति के वजह से हमें अगर कुछ कोई गलती कर रहा है तो हमें तो उसका धन्यवाद देना चाहिए बजाय इसके कि क्रोध करे, क्योंकि उसने एक मौका दिया ना हमको, किस बात का, आत्मनिरीक्षण करने का। उसने हम पर आरोप लगाए, इल्जाम लगाए, उसने हमें गाली दी, इंसल्ट की, हमारे विरोध में कुछ बोला, हमारा अपमान किया, तो हम उसके ऊपर क्रोध करते हैं। पर क्रोध तो मार्ग नहीं है, क्योंकि हम स्वयं को दंडित कर रहे हैं, हम स्वयं को अशांत कर रहे हैं उसकी गलती की वजह से। दादी जानकी कहते हैं ना, भूल किसी और की, अवगुण दूसरों के, मुसीबत हमारी। अवगुण दूसरों के पर मुसीबत हमारी। सभी का फोटो निकल रहा है, नहीं आता है तो बहुत अच्छा क्रोध, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में माया को आने नहीं देना। आगे चलकर ये केवल क्रोध की बात नहीं है, काम की भी बात है, लोभ की भी बात है, अहंकार की भी बात है, सभी विकार की बात है। अगर अभी तक सेफ है तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना। अच्छा, माताओं को मोह आता है?
नहीं।
आप बोल रहे हैं,
माताओं को नहीं आता।
किसको आता है फिर?
भाइयों को।
मोह किसमें? पांडव में होता है रोब, जो क्रोध का ही अंश है, और माताओं में होता है मोह। तो इस वर्ष क्या करेंगे, क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए, क्रोध से मुक्त होना है। क्रोध से मुक्त होने की विधि क्या है? क्रोध को जानना। केवल क्रोध के लिए क्रोध को गालियां देने से कुछ नहीं होगा, काम को गालियां देने से काम मुक्त नहीं हो जाए हो सकता है, मोह को गालियां देने से मोह से मुक्ति नहीं हो सकती है, अहंकार को गालियां देने से अहंकार से मुक्ति नहीं हो सकती। जिससे मुक्त होना है उसे संपूर्ण रूप से जानना होगा कि उसका स्वरूप क्या है, बजाय इसके कि दूर भागना। जैसे कोई रस्सी पड़ी हुई है, किसी को, दो व्यक्तियों को लग रहा है ये सांप है, एक व्यक्ति भयभीत हो रहा है और दूसरा भाग रहा है, एक को भय लग रहा है कि ये मुझे काटेगा और दूसरा सांप को देखा और भाग रहा, दोनों ही गलत है।
तीसरा रस्सी उठा के लेता काम,
वो सामने जाओ और उसको फेस करो और उसको देखो ये है क्या, देखने के उसके समीप जाओगे तो पता चलेगा वो सांप है ही नहीं। वो तो अज्ञान है, वो तो खाली एक रस्सी है, सांप है ही नहीं। क्रोध भी वैसा है, क्रोध जागृत अवस्था में क्रोध नहीं आ सकता है। जब हम जागृत है, जब हम होश में है, जब हम अमूर्छा में है, जब हम स्मृति में है, किस स्मृति में, आत्मिक स्वरूप में है। क्रोध तो वो है जब हम वो नहीं है जो मैं हूं, अगर मैं वो हूं जो मैं हूं वहां क्रोध नहीं है। मैं कुछ और प्रयत्न करके कुछ और बनना चाहता हूं जो मैं नहीं हूं, तब वो क्रोध है, तब वो काम है, तब उसमें अहंकार है, तब उसमें ईर्ष्या है, तब इसमें द्वेष है। पर मैं जो हूं स्वयं, मैं आत्मा, वो तो है ही शांत। अशांति के लिए प्रयत्न किया जाता है, यहां तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
है।
जो है वो है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विधि क्या है, कुछ नहीं करना, ये विधि है। जो है उसी में रहना, ये विधि है। कुछ करके कुछ और ढूंढना विधि नहीं है। मैं हूं ही, मुझ में ही है शांति, मैं तो कहीं और जाकर अशांति कर रहा हूं। तो क्रोध से मुक्त होने की विधि है स्वयं में स्थित हो जाना, क्रोध से मुक्त होने की विधि है जागरण। अगर मैं जागृत हूं कि मैं आत्मा हूं, इस जागरण में, इस अमूर्छा की अवस्था में क्रोध नहीं है। मूर्छा में क्रोध है, बेहोश होने में क्रोध है, होश में रहने में क्रोध नहीं है। होश अर्थात आत्माभिमान, बेहोश अर्थात देहाभिमान, मूर्छा अर्थात देहाभिमान, अमूर्छा अर्थात आत्माभिमान। तो अमूर्छा की अवस्था, जागरण की अवस्था और स्मृति की अवस्था आत्मिक आत्माभिमानी स्थिति है। इस आत्माभिमानी स्थिति से हटकर हम कुछ और करना जा रहे तो उसमें क्रोध है। तो क्रोध से मुक्त होना है तो स्वयं की स्मृति में रहना, होश में रहना। कोई अगर होश में चल रहा है फुल और सामने गड्ढा है तो गिरेगा? फुल होश में है, जानबूझ के कोई गड्ढे में गिरता है? गड्ढे में तब हम गिरते हैं जब हम एक सेकेंड के लिए बेहोश हो जाते हैं। क्रोध तब आता है जबकि एक सेकंड के लिए हम अपने आप को भूल जाते हैं और जिसने क्रोध किया उसका चिंतन चालू कर देते हैं। क्रोध तब हम में प्रवेश करता है। तो आत्मा तो संपूर्ण विकारों से मुक्त ही है, उसका ओरिजिनल स्वरूप, केवल उसमें टिकना है बस। तो बाबा कह रहे क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे करना ही पड़ता है नहीं तो काम नहीं चलता, जस्टिफिकेशन। क्योंकि हर व्यक्ति जो करता है, अगर उसको ये पूछा जाए तुमने ये क्यों किया, तो वो उसका संपूर्ण उत्तर देता है कि ये जरूरी था, स्वयं को राइट सिद्ध करने की इच्छा हर आत्मा में समाहित है। वो चाहे गलत भी हो परंतु वो उसको प्रूव करेगा, प्रमाण देगा कि ये जरूरी था, नहीं तो ये लोग सुधरेंगे नहीं, नहीं तो ये लोग गलतियां ही करते रहेंगे। उसके पास हर एक प्रमाण है। बाबा क्या कह रहे हैं, आजकल के समय के प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है, मटके भी सुखा लेता है, बाबा कहते हैं क्रोध तो। और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा विकार है, काम क्रोध दोनों को हमको जीतना है, दोनों बड़े विकार है। तो क्रोध जीत बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। और दूसरी जो बात बताई ना, दो लोग क्रोध कर रहे हैं और किसी और ने सुना तो वो बाप की निंदा हो गई। माताओं को मोह जीत बनना है, मोह भी क्या है, बेहोशी है, एक मूर्छा है। मोह की अवस्था काम की अवस्था, ये होश की अवस्था नहीं है, एक पागलपन है, एक क्षणिक पागलपन। क्योंकि जो पागल व्यक्ति स्थायी पागल है, क्रोध क्षणिक पागलपन है। क्रोध में व्यक्ति जो कुछ करता है उसको अगर वही वीडियो बाद में दिखाया जाए तो उसे लज्जा आएगी, उसको लगेगा ये मैं हो ही नहीं, उसको लगेगा ये कौन था। उसको अगर वो दिखाया जाए सारा सीन, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, एक तरफ तो अमृत वेला शक्तिशाली हो, उसी अमृत वेले के समय उसे अपनी ही सीढ़ी दिखाई जाए पहले दिन के शाम की, जब वो किसी और से लड़ रहा था, अभी योग में उसे आनंद का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, और सडनली वो उसके सामने दिखाया जाए कि कल तुम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उसकी सांसें तेज चल रही थी, वो कहेगा ये मैं हूं ही नहीं, वो कौन था, नकली आदमी, पता नहीं, असली आदमी तो इधर बैठा है योग में, क्योंकि ये होश में है, ये होश की अवस्था है। वो तो बेहोशी थी, मदहोशी थी, वो एक मूर्छा थी। तो जागरण की अवस्था ही सर्व विकारों से मुक्त अवस्था है। स्वयं को जागृत रखना, अटेंशन और चेकिंग, यही इसी का अर्थ है जागरण। निरंतर जागृत रखना, निरंतर कुछ कर नहीं रहे, चल रहे, पर केवल अगर योग भी नहीं कर रहे, केवल ये सोचो कि मैं आत्मा सब कुछ देख रही हूं। चलते चलते जो प्राणायाम करते हैं, विपश्यना करते हैं, उसमें क्या किया जाता है, बैठते हैं, प्राणायाम में श्वासों को नियंत्रित किया जाता है, विपश्यना में प्राणों की तरफ केवल केंद्रित करते हैं, केवल ध्यान केंद्रित करते हैं, श्वास आ रही है और जा रही है, और धीरे धीरे देखा जाता है कि शरीर से डिटैच हो जाते हैं। करते करते आत्मा का ज्ञान ही नहीं है उनके पास, केवल श्वास की गति के ऊपर ध्यान देने से ही आत्मा इतनी शांत हो जाती है, क्योंकि वहां आत्मा देख रही है ना, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, परंतु वो आत्मा ही देख रही है, साक्षी हो गई और श्वास को देख रही है और शांत हो गई। वह भी आत्माभिमानी स्थिति है, परंतु बिना आत्मा के ज्ञान के। हमारे पास आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है। मैं आत्मा चलते फिरते भी जो कुछ देख रही हूं साक्षी स्थिति में, वो आत्मा ही देख रही है। यही आत्माभिमानी स्थिति है, यही क्रोध और विकारों से मुक्त स्थिति है। तो मोह भी वैसे ही एक बेहोशी है। होश में कभी कोई क्रोध नहीं कहेगा, होश में कभी कोई मोह नहीं होगा, होश में कोई काम वासना उत्पन्न नहीं हो सकती है। काम वासना के जो क्षण है वो बेहोशी के क्षण है। तो बाबा कह रहे हैं कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता है, मोह से भी क्रोध आता है, क्रोध के तो कई कारण है। सबने क्या लक्ष्य रखा है, बाप समान बनना, तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? बाबा में क्रोध क्यों नहीं है, परमात्मा में क्रोध क्यों नहीं है? क्योंकि वो निरंतर अपने समान अपनी स्थिति में स्थित है, वो देह में नहीं है, वो अपने परमात्मा समान में स्थित है। जैसा वो परमात्मा समान है, वैसे आत्मा समान में भी क्रोध नहीं है, ओरिजिनल स्थिति में क्रोध है नहीं है। तो ये भूल है, ये विस्मृति है जो क्रोध दिला रही है।
तो सारा बच्चों ने ले लिया।
तो समान बनना पड़ेगा, ये केवल जानना है, केवल जानना बस। ये अंधकार है कमरे में, उसे वहां पर प्रकाश को लाना है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। वो अंधकार से इसके लिए ये जो शब्द है, ये भी थोड़ा मुझे पर्सनली, क्रोध जीत बनना है, मोह जीत बनना है, काम जीत बनना, इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द मुझे लगता है क्रोध मुक्त बनना है, काम मुक्त बनना है, माया मुक्त बनना है। क्योंकि जीत अर्थात वहां फिर लड़ाई है, फिर वो एक शत्रु है सामने, फिर एक तनाव है, उससे मुक्त, अंधेरा मुक्त नहीं बनना है। प्रकाश वहां आ गया तो अंधेरा स्वतः ही, अंधेरा जीत नहीं, अंधेरा मुक्त। वहां अंधकार है ही नहीं जहां प्रकाश है। तो स्वयं को जागृत रखना है, स्वयं को होश में रखना है, स्वयं को अटेंशन में रखना है, स्वयं को अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति में रखना है। तो वहां क्रोध नहीं है, वहां अहंकार नहीं है, वहां ईर्ष्या नहीं है, वहां द्वेष नहीं है, वहां काम नहीं है। तो समान बनना पड़े ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन माया जीत बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्रोध ना है। आज तो बाबा ने कहा परिस्थिति की वजह से दो अच्छे काम हो जाते हैं। आज के वरदान में कहा है बाबा ने, तुमको एक तो सर्टिफिकेट मिल जाता है विघ्न विनाशक का, और दूसरा अनुभवी मूर्त का वरदान तुमको प्राप्त हो जाता है। तो धन्यवाद देना चाहिए परिस्थिति को, वहां मेरे मित्र तुम आए और मुझे ये डिग्री दी और ये वरदान दे दिया अनुभवी मूर्त का, बहुत अच्छा, आत्म निरीक्षण का एक मौका दिया। बार बार आते रहना ऐसे ही। तो परिस्थितियों को और उन व्यक्तियों को हमेशा धन्यवाद देना जो कुछ तो गड़बड़ करते हैं हमारे साथ। और तो अंडरलाइन करके इस वर्ष में समाप्त करो।
गड़बड़ थोड़ा तो अच्छा हो।
अच्छा है, बाबा ने आज वही कहा, पाठ तुम्हारी क्लास आगे बढ़ती है, पाठ पढ़ाती है परिस्थिति। तो क्या सुना, खजाने सारे हमको मिले हैं, सबको समान खजाने मिले हैं, फिर भी किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा है, कारण उसका है, कोई अपना खजाना बढ़ा रहे, कोई नहीं बढ़ा रहे। तो खजानों को बढ़ाने की विधि है बांटना, पर खजाने चोरी ना हो जाए उसके लिए दो पहरेदार है, दोनों के पैरों में घुंघरू लगा के रखना, ताकि घुंघरुओं की आवाज से चोर ना आए।
कौन से घुंघरू?
अभी घुंघरू कौन से, उस पर चिंतन करना। अटेंशन और चेकिंग तो पहरेदार है, तो ये दोनों पहरेदार सदा जागते रहे, उनको सोने नहीं देना, उनको यहाँ वहां नहीं जाने देना, उनके ऊपर अटेंशन रखना, अटेंशन पे अटेंशन, चेकिंग की चेकिंग। और बाबा ने कहा दुख की लहर तो नहीं आती, दुख की लहर कैसे आएगी तुम्हें, क्योंकि तुम तो हो ही सुख स्वरूप, तुम्हारा आदि और अनादि स्वरूप सुख स्वरूप है, तो तुम में दुख की लहर कहां से आ सकती है। फिर बाबा ने क्या कहा, क्रोध, क्रोध से मुक्त हो जाना है, तो विधि है जागरण, विधि है धैर्य से भी क्रोध को जीता जा सकता है, धैर्य से क्रोध को जीतना है, जागरण से क्रोध को जीतना है, अमूर्छा की अवस्था से क्रोध को जीतना है, क्रोध को समझना है, क्रोध को फेस करना है, एनकाउंटर देखना है, उसको क्या है वो, उसको देखते रहोगे तो वो समाप्त हो जाएगा, उसको संपूर्ण रीति से समझ ही क्रोध से मुक्त करा देगा। प्रतिज्ञा करके क्रोध से मुक्त नहीं की हो जा सकता, प्रतिज्ञा करते आज से क्रोध छोड़ देंगे, दूसरे दिन उसी दिन क्रोध आता है, क्योंकि समझा ही नहीं है जिसके लिए प्रतिज्ञा करती है। समझ ही प्रतिज्ञा बन जाए, समझ ही नियम बन जाए, समझ ही व्रत बन जाए, संपूर्ण समझ बन, संपूर्ण समझ ही काम से मुक्त करेगा, विकारों से मुक्त करेगा। तो बाबा ने कहा क्रोध से मुक्त हो जाए और मोह से मुक्त हो जाए, जिन्होंने क्रोध को जीता है उनके लिए बाबा ने हाथ उठाए। तो बाबा ने कहा इस वर्ष ये कार्य करना, क्रोध करना अर्थात दुख देना और दुख लेना, तो इससे मुक्त। अच्छा, ओम शांति।
एक भाई एक बार क्लास लिया, बोला मैं तो राज रोज रात को घुंघरू का आवाज सुनता हूँ। एक बार स्मरण चिंतन के घुंघरू नहीं।